ओम शांति। समय की पुकार, अचल अडोल स्थिति, मधुबन में हम जब जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के अचल अडोल स्थिति की यादगार शांति स्तंभ के रूप में पाई जाती है। यहां तक ही नहीं, लेकिन माउंट आबू में अचल गढ़ के रूप में भी बाबा के और हम बच्चों के अचल और अडोल स्थिति की यादगार अचल गढ़ के रूप में पाई जाती है। तो हम बाबा के बच्चों ने बाबा के साथ ऐसी अचल अडोल स्थिति हर कल्प प्राप्त की है और इस कल्प में भी प्राप्त करनी है। क्योंकि जिनकी अचल अडोल स्थिति होगी अंत में उनको बेहद की सेवा करने का चांस मिलेगा। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए कुछ एक बातें हमें बुद्धि में रखनी होगी और कुछ एक बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा। तो बुद्धि में 5-7 बातें हमें जरूर रखना है ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए। पहली बात, सदा हमें याद रखना है एक साधे सब सधे, कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर हम एक बाप पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनका ही हाथ पकड़ते हैं, उनसे ही मदद करते हैं लेते हैं, तो हमारे सारे काम बहुत अच्छी तरह से होते हैं। लेकिन एक के बजाय अनेक देवी देवताओं पर विश्वास रखकर उनसे हम मदद मांगते रहें तो कुछ काम हमारे सफल होते रहें और कुछ में सफलता नहीं भी मिली। इसलिए इस संगम युग में एक बाबा पर पूरा हमें भरोसा रखना है और उनसे ही हमें मदद लेते रहना है। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में जो हम गाते थे, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेल रचाऊं और तुम्ही से सोऊं, ये जो कहावत हम सुनते आए हैं उसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव अभी करना है। क्योंकि सतयुग त्रेता युग में इसकी आवश्यकता नहीं थी, द्वापर कलयुग में हमें बाबा का परिचय नहीं था, लेकिन संगम युग में हमें ये गोल्डन चांस मिला है कि एक बाबा के साथ ही हर प्रकार से हर समय साथ में रहें और उनकी कंपनी का आनंद लेते रहें। तो तुम्ही से बैठू अर्थात परम धाम में बुद्धि के द्वारा बाबा के साथ बैठे, तुम्ही से रास रचाऊं माना बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में हाथ देकर हमें रास रचना है, साथ रहना है, हाथ में हाथ रखना है, तो हर पल हर घड़ी हमें बाबा का साथ अनुभव करना है। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तीसरी बात, एक बाबा ही सच्चा, निस्वार्थ और सदा का सहारा है, ये हमें अनुभव करना है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण भक्ति मार्ग में बताते हैं। जब द्रौपदी का चिरहरण चल रहा था, उस समय द्रौपदी अपने बचाव के लिए अपने जो नजदीक वाले हैं उनको पुकार रही थी। जब उसने अर्जुन के तरफ देखा तो अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे कर दी। भीम के तरफ देखा, भीम ने भी अपनी आंखें नीचे कर दी। यहां तक युधिष्ठिर के तरफ देखा तो भी उसने भी आंखें नीचे कर दी। वो सोचने लगी, ये हमारे अपने हैं और मुझे मदद करने के लिए नहीं आ रहे। तो बाद में उसने कृष्ण को आह्वान किया और कृष्ण दौड़ा दौड़ा कर उसको मदद करने लगे। तो ये वर्तमान समय की यादगार हैं। दुनिया में जो भी लौकिक अलौकिक सारे हैं, अंतिम समय कोई भी मदद नहीं करेंगे और किसी में मदद करने की क्षमता भी नहीं है। अंतिम समय बाबा नंगे पैर दौड़े दौड़े आएंगे और हमें मदद करेंगे। इसलिए बाबा ही एक सच्चा सहारा है, निस्वार्थ सहारा है, ये हमें अनुभव करना है और उनके ही बल पर और भरोसे पर चलते रहना है। तो अचल अडोल स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती रहेगी। चौथी बात है, भक्ति मार्ग में पति व्रता और पिता व्रता का गायन है, वो हमें अभी अनुभव करना है। पतियों का पति हमें शिव बाबा मिला है। इस दुनिया में भाग्यशाली उनको कहते हैं जो सदा सुहागन रहते हैं। तो हमारा पतियों का पति बाबा अजर अमर अविनाशी हैं, इसलिए हम सदा सुहागिन हैं। उनको ही हमें याद करते रहना है। दुनिया में अगर कोई पर पुरुष को याद करता है तो कहते हैं इसका सुहाग खंडित हो गया है। इसलिए हमें एक बाबा को बुद्धि में बिठाना है और बाबा को ही हमें याद करना है। पिता व्रता अर्थात एक बाबा को ही पिता के रूप में अनुभव करना है। पिता का जो निस्वार्थ प्यार है, लौकिक पिता का प्यार स्वार्थ भरा होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है। तो वो निस्वार्थ प्यार हमें अनुभव करना है और उनका ही फरमानदार ईमानदार बच्चा बनकर पिता व्रता को हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। पांचवी बात, सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तियों का एहसास हमें करना है। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, कोई गधा वगैरह नहीं होता है। तो सर्वशक्तिवान बाप के हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे कहलाते हैं, ज्ञान सूर्य बाबा के बच्चे हम मास्टर ज्ञान सूर्य कहलाते हैं। इसलिए अमृत वेले ऐसे शक्तिशाली स्वरूप को हमें याद करना है और सारे दिन भर में बाबा की छत्र छाया में अनुभव करते जाना है और बाबा से शक्तियों की अनुभूति करते जाना है, शक्तियों का स्टॉक बढ़ाते जाना है। गीत में भी हम सुनते हैं कि तुम महज इंसान नहीं हो, तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो। तो माताएं भी ज्ञान में आने के बाद हमें स्वयं को अबला नहीं समझना है, मैं नारी शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे श्रेष्ठ सोमान में रहना है। घड़ा अगर थोड़ा भी खाली होता है तो वो छलकता रहता है, इसलिए हमें स्वयं को शक्तियों से भरपूर करना है तो हमारी स्थिति अच्छा डोल बनती जाएगी। अगर शक्तियां कम होगी तो स्थिति डोलायमान हो सकती है, स्थिति हलचल में आ सकती है। और जब हलचल में हम आते हैं तो हल चलाने जैसी मेहनत इस ईश्वरीय जीवन में करने लगते हैं। इसलिए भगवान हमारा बाप है, हमें हल चलाने जैसी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सदा चल डोल रहना है, अंगद के समान एकदम स्थिर स्थिति को प्राप्त करना है। छठवीं बात, हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी एक बाल और एक भरोसे पर रहकर सदा अचल अडोल स्थिति अनुभव करती थी। मैंने दादी जी के साथ 30 वर्षों तक मधुबन में रहा और दादी जी को मैं बार बार देखता था कि दादी जी के सामने जो भी समस्या आती थी उन समस्याओं को दादी जी कैसे पार करती थी। तो दादी जी का इंटरव्यू मैं एक बार ले रहा था तो दादी जी से पूछा कि दादी जी आप इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभालती हैं, परिस्थितियां कठिनाइयां समस्याएं आती हैं, क्या आपकी स्थिति हलचल में नहीं आती हैं? तो दादी जी ने जवाब दिया था कि देखो दुनिया के सबसे पावरफुल दो फोर्सेस मेरे साथ साथ सदा रहते हैं, एक कंधे पर मैं शिव बाबा को अनुभव करती हूँ और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में मेरे साथ रहते हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो इनकी मदद से हर समस्या चुटकी से पार हो जाती है और मैं सदा अचल अडोल निश्चिंत रहती हूँ। तो हमें भी ऐसा अनुभव करना है। कोई भी समस्या आती थी, कितनी भी बड़ी समस्या यज्ञ पर आती थी, तो दादी जी का एक स्लोगन बहुत पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करना अर्थात सर्वशक्तिवान परमात्मा का सहारा लेना, मदद लेना, और जिस कार्य में सर्वशक्तिवान की मदद मिलती है उस कार्य में हमें सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता है। इसलिए हमें बाबा की मदद लेते रहना है और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते जाना है। सातवीं बात, द्वापर युग से हम सुनते आए हैं थे कि भक्ति में शक्ति है। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि शुरू में हमारी भक्ति अव्यभिचारी थी, हम सभी परमात्मा को सर्वशक्तिवान परमात्मा को इनडायरेक्टली शिवलिंग के रूप में याद करते थे, तो उस भक्ति में शक्ति की अनुभूति होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, भक्ति व्यभिचारी होती गई, अनेकों को हम याद करने लगे, उसके कारण भक्ति में शक्ति भी कम अनुभव होने लगी। इसलिए हमें अव्यभिचारी याद में बाबा के रहने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद एक स्लोगन कभी भी नहीं बोलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा प्रकृति के द्वारा होती है। इसलिए बाबा तो मुझे मिला, भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला है और क्या मिलना है, इस बात को बार बार हमें अपने से पूछते रहना है। तो बाबा से हमें शक्तियां लेते रहना है और स्थिति को अचल अडोल बनाते जाना है। आप सभी इतने दूर से बाबा के घर में आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करने के लिए ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे हुए हैं। और जितने जितने अलौकिक अनुभव हमारे पास बढ़ते जाते हैं, उतनी अनुभव की अथॉरिटी हम बनते जाते हैं और हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाती है। अभी बाबा के पास आने के बाद अचल अडोल स्थिति बनाने का गुह्य राज क्या है, इसको समझना जरूरी है। अचल अडोल स्थिति बनाना है तो तीन बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना जरूरी है। अगर इन तीन बातों पर अभ्यास करेंगे, गारंटी है मेरी, आपकी स्थिति निरंतर मजबूत बनती जाएगी और स्थिति का स्तर ऊंचा उठता जाएगा, आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। बाबा के बच्चे बनने के बाद पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन कहीं अच्छी उन्नति करते हैं, कोई न भी कर सकते हैं। तो अच्छी उन्नति करने के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने का गुह्य राज क्या है, इस राज को हमें समझना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पहली बात, हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। बाबा हर मुरली में कहते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो। कोई मुरली खाली नहीं होगी जिसमें बाबा ने इस बात को दोहराया नहीं होगा। इसके पीछे क्या राज है, क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है, 63 जन्मों का देह का भान जो आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है, उसको हमें मिटाना है। और 21 जन्म नेचुरल आत्मा का भान रहे, उस को भी हमें जुटाना है वापस घर जाने के पहले। कहने का भाव है, इतना बड़ा 84 जन्मों का होमवर्क है ये, तो इसको हमें पूरा करने के लिए बहुत जिगरी मेहनत अशरीरी स्थिति पर करना जरूरी है। हम थोड़ा भी पुराने ज्ञान में हो जाते हैं 5-10 साल, तो हमें अहंकार आता है कि क्या आत्मा, आत्मा का पाठ जो है ये नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ। तो ये सूक्ष्म अहंकार हमें इस बात पर मेहनत करने नहीं देता है। उसके कारण हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, स्थिति हमारी लड़खड़ाती रहती है, हलचल में आती रहती है। अंगत जो गायन है, ये हमारा गायन है। अंगत बैठा था रास्ते में, तो रावण आया घमंडी, कहता है, हे बंदर, हट जा यहां से, रास्ते से। तो उसने कहा, रावण, मेरा पैर हिला तो दिखा, हिला कर तो दिखाओ। तो वो पैर हिलाने लगा, पसीना पहुंचने लगा, पैर हिला ही नहीं सका। तो बाद में सोचा, ये कोई जादू का बंदर है। तो अंगद किसका नाम है, क्यों नाम है ये अंगद? अंगद अर्थात जिसने अंग को भुला दिया। अंग को भुला देना, इस अंग से न्यारे होना, इस अंग को भान को, देह के भान को गला देना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तो माया रावण बुद्धि रूपी पैर हमारा नहीं हिला सकती है, चाहे कितना भी वो प्रयास करें। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से आत्मा का अभ्यास पक्का करते जाना है, विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करना है। केवल आत्मा आत्मा रटने से काम नहीं हुआ, विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप का दर्शन हमें करना है, स्वदर्शन। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, देखिए आत्मा को और फिर उसमें स्थित हो जाए, किस प्रकार का मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा के ये गुण हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाने हैं, और जैसे जैसे ये गुण हमारे अनुभव के रूप में बढ़ते जाएंगे, तो ये आत्मा का अभ्यास हमारा परिपक्व बनता जाएगा। क्योंकि हमें पहले तो अपने देह रूपी पिंजड़े से न्यारा होना है, इस पिंजड़े से आजाद होना है। अभी पिंजड़े में फंसे हुए हैं, तो स्वतंत्र पंछी ही उड़ता पंछी बनता है। तो इसलिए स्वतंत्र, स्व के तन से स्वतंत्र, भान से न्यारे जब हम हो जाते हैं, तो आजाद पंछी हो जाते हैं। उसके बाद हम परम धाम की ओर उड़ सकते हैं। इसलिए इस देह भान को हमें गलाते जाना है, भुलाते जाना है। 24 घंटे हमें भान रहता है, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, 24 घंटे झूठा भान। तो ऐसा सत्य भान, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ऐसा 24 घंटे भान रहे, वो अभ्यास हमें अभी करना है। तो कितनी मेहनत अपनी करनी होगी, आप अपने से पूछो। किसी भी बहुत बड़ी उपलब्धि को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं, धुन है तो धन है, धुन नहीं तो धन नहीं। एक स्लोगन सदा याद रखना है, जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। जितना हम अपने देह से न्यारे रहते हैं, उतना बाबा की याद हमें सहज आती है, और अविनाशी कमाई हम करने लगते हैं, और भाग्य का सितारा चमकने लगता है। इसलिए हमें पिंजड़े का पंछी बनकर नहीं रहना है, पिंजड़े के भान से न्यारे रहना, अर्थात आजाद पंछी अनुभव करना। आजाद पंछी किसको कहते हैं? आजादी। जब चाहूं मैं आत्मा पंछी इस पिंजड़े में आ जाऊं, जब चाहूं इससे फ्री हो जाऊं, इसमें रहते हुए इससे न्यारा हो जाऊं, इसको कहते हैं आजाद पंछी। तो ऐसी स्थिति हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। और पंछी बनने के लिए मैं पन की जो छी छी आत्मा में है उसको हमें खत्म करते जाना है, तो मैं आत्मा पंछी बनकर सदा उड़ता रहूंगा। इसलिए अशरीरी स्थिति के अभ्यास को हमने अंत तक पढ़ाते जाना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस आत्मा के अभ्यास को छोड़ा नहीं, हर रोज मालिश पॉलिश इसकी करते थे, अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से गहराई से अनुभव करते थे। दूसरी बात, अच्छे लडोल स्थिति बनाने का गुहराज है। जब हम देह से न्यारे हो जाते हैं तो हमें इस दुनिया से ऊपर जाना है, ऊपर वाले राम को याद करना संभव तब होता है जब यहां से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले का हाथ पकड़ते हैं तो ही हम ऊपर उठ सकते हैं। अभी ऊपर हमें कौन ले जाएगा? वो काम है स्वमान का। जितना निश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करते हैं, लेकिन ईश्वरीय नशे में स्थित रहने के लिए हमें स्वमान के सिंहासन पर सदा बैठे रहना है। सभा में जो भी बैठे हैं, बहुत रॉयल आत्माएं बैठी हैं, बहुत महान आत्माएं बैठी हैं, एक भी आत्मा इसमें साधारण नहीं है। इसलिए बाबा ने ऐसी महानता को अपनाने के लिए स्वमान के बड़े बड़े टाइटल हमें दिए हैं, बड़े बड़े टाइटलों से हमें नवाजा है कि आप सारे विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, आप विजय रतन हो, आप बाबा के गले का हार हो, भगवान के नैनों का नूर हो। इतने बड़े बड़े टाइटलों से बाबा ने नवाजा भाई, तई ताली तो बजाओ जरा। दुनिया में किसी को टाइटल मिलता है पद्मश्री का या भारत रत्न का, अकड़ के चलते भारत रत्न हो, मैं विश्व रत्न हो, पद्म भूषण हो, कोई अधिकारी कोई व्यक्ति उसको टाइटल देता है, और हमें तो स्वयं भगवान ने दिया है। और ऐसे सिंपल साधारण नहीं दिया है, केवल भारत रत्न नहीं दिया है, विश्व के रत्न हम हैं, विश्व के पिता हमें इतने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये बाबा जो देते हैं बड़े बड़े टाइटल, उनको स्वीकार करने के लिए थोड़ा हम कभी कभी हिचकते हैं। इतने बड़े टाइटल और मेरे लिए? मैं उसके लायक तो हूं नहीं, पता नहीं बाबा मेरी ऐसी तो महिमा तो नहीं करते हैं भाई। इतने बड़े टाइटलों को हम स्वीकार करने के लिए थोड़ा क्यों ही चकते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि सतयुग त्रेता युग में हम राजे महाराजे रानी मारियाने थे, लेकिन द्वापर में जैसे प्रवेश किया माया ने पकड़ लिया और किडनैप करके करके जेल में ठोक दिया। 2500 साल तक माया के जेल में रहे राजे महाराजे, इसलिए हीन भावना आत्मा में कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें ऐसे श्रेष्ठ सम्मान के टाइटलों को स्वीकार करने के लिए हिचकाते हैं। एक ही दुनिया में बाबा ऐसे हैं जो सदा सत्य बोलते हैं, इसलिए हमें निसंकोच उन टाइटलों को स्वीकार करना है और उसका अनुभव करते जाना है, तो स्वतः ही आत्मा में वो रॉयल्टी, वो नोबिलिटी, वो ईश्वरीय नशा अनुभव होता रहेगा। और जब हम आत्माएं परम धाम में रेस्ट करके नीचे आएंगे सतयुग में, और जब सिंहासन राजा महाराजा का मिलेगा, तो हमारे चेहरे पर वो रुहाब, वो नशा, वो मस्ती ऑटोमेटिक अनुभव होती जाएगी। इसलिए वो भी संस्कार हमें अभी भरना है, और उसके लिए समान के टाइटलों को स्वीकार करना है, समान के सिंहासन पर बैठना है। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है, और राजा हमेशा अपने प्रजा पर नियंत्रण और अनुशासन करता है। बाबा कहते हैं, मेरी आशा है हर एक आत्मा रूपी बच्चा को मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। बाबा की आशा हम पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं आत्मा राजा इस समान के सिंहासन पर बैठा हूँ, और जो भी मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उस पर शासन और नियंत्रण करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। ऐसा हमें अनुभव अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। कोई भी जो भी समान का टाइटल आपको नशा चढ़ाता है, खुशी का अनुभव कराता है, समझ लो वो टाइटल आपकी आत्मा के लिए सुटेबल है। तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये दोनों बातें साथ साथ रहेगी तो आपको नशा चढ़ता जाएगा, ईश्वरीय खुमारी चढ़ती जाएगी, तो माया की बीमारी आपको नहीं लगेगी। लेकिन हमें अपनी मस्ती में सदा रहना है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमें अनुभव होनी चाहिए। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो बहुत होशियार होते हैं, वो दो चीजें अपने चेहरे पर रखते हैं, एक खुशी और दूसरी खामोशी। खामोशी अर्थात शांत चित रहना। खुशी और खामोशी हमारे चेहरे पर हमेशा रहे तो बाबा की याद हमें बहुत सहज होने लगती है। इसलिए समान के टाइटल को हमें दिल से स्वीकार करना है और उसमें स्थित होने का अभ्यास करना है। अभी यहां से आप परम धाम में बाबा के पास जाकर बैठ गए, परम धाम में ऊपर वाले के पास बैठ गए, अभी यहां लंबे समय तक हम बैठे रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? क्योंकि हम बाबा के पास जाते हैं, देह का भान हमें अपने तरफ खींचता है, माया अपने तरफ खींचती है। हम बाबा के पास जाके बैठते हैं, माया हमें नीचे खींचती है। इसी संघर्ष में हमारा समय चला जाता है। इसलिए वहां लंबे समय तक बैठने का काम कौन करा सकता है? बाबा से जो जिगरी प्यार है वो जितना बढ़ता है उतना हम बाबा के समीप अनुभव करते हैं। तो इसलिए प्यार एक ऐसी दुनिया की चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की ही नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है। जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार जुड़ जाती है। जितना प्यार उतना देर तक बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहती है। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप कहेंगे हमारा तो प्यार बाबा के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बाबा चाहते हैं जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, सच्चा प्यार बाबा के साथ हो। हमने दादियों को देखा, उनके पास कुछ नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन जब वो बाबा से डायमंड हॉल की स्टेज पर मिलती थी बाबा उनको अपनी बाहों में समा लेते थे और वो भी बाबा को अपनी बाहों में समा लेती थी। क्या था उनके पास? खुदा भी उन पर फिदा था। उनके पास, उनके रग रग में, रोम रोम में केवल परमात्म प्यार ही था, इसलिए वो खुदा भी उन पर फिदा था। ऐसा सच्चा प्यार हमें बाबा के प्रति बढ़ाते जाना है। प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन जिगरी प्यार केवल एक बाबा के साथ ही हमें रखना है। संगम युग में हमें किसी भी आत्मा के साथ, वस्तु के साथ प्यार शेयर नहीं करना है, केवल बाबा के साथ ही सच्चा सौदा प्यार का करना है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन तीनों बातों को जीवन में बढ़ाते जाएंगे तो अचल अडोल स्थिति की अनुभूति हम करते जाएंगे। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। क्योंकि ये समय थोड़ा सुस्ती का है, कहीं अपने निंद्रा देवी में झूल रहे हैं, मस्ती में नाश्ता करके बैठे हैं और अपने निंद्रा देवी के इसमें झूले का झूले में झूल रहे हैं। तो चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे। योगी माना चुस्त और मस्त रहने वाले। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य पिंजड़े में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा माया का गुलाम था। भगवान ने मुझे आजादी दी है। इस देह रूपी पिंजड़े में बैठकर मैं स्वयं को स्वतंत्र पंछी अनुभव कर रहा हूँ। मोह आत्मा रूपी पंछी को बाबा ने उमंग उत्साह के पंख दिए हैं। मैं आत्मा रूपी पंछी उमंग और उत्साह के पंखों के द्वारा फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूँ। उड़ता पंछी उड़ती कला में उड़ता जा रहा हूँ। इन पांच तत्वों से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ओहो, मैं आत्म पंछी फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोस आतम पंछी ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मोज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। प्यार के सागर में खो गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आतम पंछी पुनः उड़ता हुआ निराकारी दुनिया की ओर जा रहा हूं। उड़ता पंछी उड़ता हुआ निराकारी दुनिया की ओर जा रहा हूं। उड़ता जा रहा। ओहो ब्रह्मांड की दुनिया में निराकारी दुनिया में पहुंच गया हूं। यहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। ओहो मुझे आजादी दिलाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मोज आतम पंछी के समक्ष विराजमान है। मैं आतम पंछी बाबा के सुंदर छवि को अंतर चक्षु से निहार बाबा की सुंदरता का आनंद ले रहा हूं। बाबा मेरे नैनों में समा चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मौज आतम पंछी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आतम पंछी ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। ग्रहण करता ही जा योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म पंची स्वयं को एकदम लाइटर को शीश से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को एक टक देख रहा हूँ। अचल डोल स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। एकदम बाबा ही बाबा मेरे नैनों में मेरे दिल में समाये हुए हैं। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। इतनी विशाल परम धाम में मैं आत्मा अपने प्यारे शिव पिता के साथ मंगल मिलन मना रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्म पंछी पुनः उमंग उत्साह के पंखों से उड़ता हुआ निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ वापिस आ रहा हूँ और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य पिंजड़े में आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुका हूँ। मोज शक्तिशाली आत्म पंछी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा इस स्थूल अंगों से न्यारी अनुभव करते हुए अंगत की तरह अचल डोल स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा मेरे लिए रोल मॉडल है। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मज मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा चैतन्य हीरा हूँ और इस बेहद ड्रामा में हीरो पाठधारी हूँ।